ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली पूरी ही धारणा भरी मुरली है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो आज बाबा ने इसका सही अर्थ बताया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी कोई भी दान पुण्य पहले तो घर में होना चाहिए, घर को भी देखना है। तो हमारा घर कौन सा, हमारा ये शरीर आत्मा का ये घर है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना, पहले अपनी धारणा पर ध्यान देना है। दूसरों को ज्ञान सुनाने से पहले अपनी धारणा पर ध्यान देना है, क्योंकि लक्ष्य तो बाबा ने बहुत ऊंचा दिया है पर उस अनुसार हमारे में लक्षण कहाँ है। तो अपने आप को पहले देखना है। दूसरा जो भी कर रहा है अब वो तो उसका हिसाब किताब, उसका कर्म, लेकिन मुझे क्या करना है। बाबा विशेष इस पर ध्यान खिंचवाते हैं। कई भाई बहने आते हैं पूछते हैं तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, यही पूछते रहते हैं। तो आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है, तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तीन प्रकार के पुरुषार्थ हैं। एक है उत्तम पुरुषार्थ, दूसरा है मध्यम पुरुषार्थ और तीसरा है कनिष्ठ पुरुषार्थ। तो उत्तम पुरुषार्थ करेंगे तभी तो उत्तम पद पाएंगे ना। तो उसके लिए आज बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो अपने ऊपर क्या मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसीलिए अपने ऊपर क्या मेहनत करनी है वो बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया है। आज 10/12/2025 है। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से, बाबा ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, दो बातें बाबा कहते हैं, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। कौन सी होगी वो दो मेहनत जो करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो वो दो बातें बाबा ने बताई है उत्तर में। उत्तर पहला, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थित रहे। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो, गीता में भी आता, अर्जुन ने भगवान से पूछा ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण क्या है, तो बहुत सुंदर उत्तर है कि ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है कि मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान स्थिति, ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। तो बाबा कहते हैं दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो क्या करो, तो तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, ये पहली मेहनत करो अपने ऊपर, मुख की ताली नहीं बजाओ। उसने गुस्सा किया तो हमने भी गुस्सा किया, ये मुख की ताली नहीं बजाओ। और दूसरी मेहनत आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आए बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, ये भी बड़ी मेहनत है। 63 जन्मों का देह अभिमान है, इतना सहज छूटता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। कौन बनेंगे गद्दी नशीन? संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, इस नेत्र को क्या नाम देंगे? जिसको ज्ञान का नेत्र कहा जाता है, ये तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। उनसे तुम देखते हो, क्या क्या देखते हो? तुम देखते हो अपने भाइयों को, आत्माओं को देखते हो। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। तो ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी, शुद्ध पवित्र हो जाएगी। तो बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं, ये मेहनत करो अपने पर, ये मेहनत करो, नई नई पॉइंट सुनाते रहते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। भाई भाई समझना, बाबा कहते हैं ये आदत डालनी है और उस अनुसार ज्ञान देना। फिर ये जो गाया जाता है, दुनिया में भी गाते हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई भाई देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले पुरुषार्थ करना होता है। क्या पुरुषार्थ करना होता है? सबको भ्रकुटी में देखने का है ना, बात देह पर ध्यान न जाए, बस भ्रकुटी अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान है वो देखना। ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, सच्चे सच्चे भाई भाई हो, क्योंकि बाप को जानते हो, पिता एक है, तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो सच्चे सच्चे भाई भाई हो। तुम पिता को जानते हो, बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो, हिम्मत रखो, तो बाबा मदद करेंगे। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो ये सहज हुआ ना। रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। कोई भी अभ्यास जो बाबा देते हैं वो करने में सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है, बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। स्पिरिचुअल माना रूहानी। सिर्फ इस समय ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है। क्योंकि क्यों इस समय ही मिलती है ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से? क्योंकि बाप आते ही इस समय है, सारे कल्प में तो आते ही नहीं है, तो जब आएंगे तभी तो देंगे ना। क्योंकि बाप आते ही है इस संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। कई कहते ना, क्यों बीच में नहीं आए, द्वापुर में आ जाते इतना दुख नहीं होता। लेकिन भगवान को आना ही तब है जब दुनिया बदलनी है। बाबा को जबकि सृष्टि बदलनी है, हाँ बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। तो बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। कल भी बाबा ने कहा ना, लोग ढूंढ रहे हैं, जरूर भगवान कहीं आया होगा। हाँ, कल की अवतार को याद करते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी आई थी, अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। तो शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे, नंबरवार बाबा कहते हैं जो जैसे आए होंगे वो जैसे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। अब इसमें भी राज है, जो जैसे आए होंगे वैसे ही वो ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। अर्थात जो एकदम शुरू शुरू में आए होंगे श्री कृष्ण के साथ, तो वो तो ज्यादा मेहनत करेंगे, और जो थोड़ा बाद में आए हैं वो फिर थोड़ा कम मेहनत करेंगे, और बाद में आए हैं तो वो और कम मेहनत करेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे वो जैसे जैसे आए होंगे वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि क्या देखने में आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पता चल जाता है, क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही मेहनत किया था, अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। अपने लिए ही तो मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है ना। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। अब दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है? हाँ देखो, होता है ना, कोई एक्टर्स अभी उनको पार्ट बजाना है, स्टेज पर आने लिए पार्ट बजाने लिए आना है, तो वो ग्रीन रूम में बैठ करके अपना वो पार्ट याद करते हैं, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। अब दूसरा उसको पार्ट दूसरा बजाना है तो उसका थोड़ी देखेंगे, वो तो डायरेक्टर का काम है ना। एक्टर का काम वो नहीं कि दूसरा क्यों का क्या बोलना है। पर मुझे क्या बोलना है वही ध्यान देगा ना। तो बाबा कहते हैं दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद पर मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को यानी भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो क्या फायदा होगा। हम देह अभिमान में है और दूसरे को आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं तो क्या नुकसान होगा, उसकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं, उड़ जाएगा हवा में, हाँ सिर से। लेकिन आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दे रहा हूँ ये अगर बुद्धि में होगा और ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा, वो ताकत आएगी। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत तो सहन करना पड़ता है। भगवान भी कहते हैं सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो बाबा क्या कहते हैं उसके लिए, तो कहते हैं चुप, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ मत जवाब दो। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेगा, क्योंकि उसने ताली बजाई, हमने तो ताली उसके साथ बजाई नहीं तो आवाज तो होगा ही नहीं, तो फिर पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया या शांत हो गया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं। एक फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, तो बाबा उस समय बाबा के समय तो बाबा ने कहा देखो तो तुम भी ये कहो मैं चुप रहूंगी मैं चुप रहूंगा, देखो ये प्रैक्टिस करो। तो दो हाथ की ताली तो न उसकी तो चलो बजी, हमने ताली नहीं बजाई तो वो कहां तक बोलता रहेगा। तो बाबा कहते अगर एक ने मुख से ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं। अब उसको शांत करना नहीं, अगर ये भी नहीं कहना है तुम चुप रहो तुम चुप रहो, बस तुम शांत हो जाओ। बस ये बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आता है तो चुप हो जाओ, है ना। ये प्रैक्टिस सबकी, अगर नहीं भी है ना तो आज से ये दृढ़ संकल्प करो चुप हो जाना है, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं, अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। हाँ, कौन सी ताली नहीं बजाओ, न विकार की न काम की न क्रोध की। अब ये भी ताली है, क्रोध की भी तो ताली है ही है, पर काम की भी तो ताली है, लोभ की भी ताली है। हाँ, उसने गुलाब जामुन खा लिया बिना जो इंचार्ज है उसको बताया, ऐसे खा लिया, चलो उसने तो खाया मैं भी खाऊं, तो ये भी क्या हुआ। हाँ, जैसे ताली बजाई। तो बाबा कहते हैं न विकार की न काम की न क्रोध की। तो बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए, कितने बाबा के सेंटर्स बनते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, कई अभी तो होड़ लग गई है सेंटर बनाने के। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए, कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे ना, देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं, फिर बाबा से पूछते थे सेंटर खोलूं। हम सेंटर खोलते हैं हम खर्चा उठाएंगे, दादी भी कहती थी अगर सेंटर खोलना है पहले खर्चा उठाओगे, वो कहते हम सर हम खर्चा उठाएंगे, तब बाबा तब दादी भी छुट्टी देती थी। कहीं विदेश में भी सेंटर खोलना होता था, अफ्रीका की सेवा भी ऐसे ही शुरू हुई। तो अफ्रीका का कोई आया और उसने देखा, इतना बड़ा आदमी था वो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसने देखा इतना ये अच्छा ज्ञान है, तो दादी को कहा दादी आपके ये अफ्रीका में आपके सेंटर्स हैं? तो कहा नहीं, अफ्रीका में उस समय कोई सेंटर नहीं था, कोई ज्ञान अभी किसने दिया नहीं था जाकर। तो उसने कहा सेंटर कोई नहीं, ज्ञान तो कितना अच्छा है, क्यों नहीं वहां सेंटर खोला? तो दादी ने एक ही बात कही, जो कहते सेंटर खोलना है वो पहले जिम्मेदारी ले, वो बहनों को बुलाए, तब बहनें वहां जाएंगी और वो निमित्त बने। तो उसने कहा मैं बनता हूं सीधा। तो अब दादी ने कैसे अफ्रीका में भेजा, सब जगह ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं, तो कि बाबा सेंटर्स खोलूं, हम सेंटर खोलते हैं हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। कल भी बाबा ने कहा ना अंत आएगा तो क्या क्या उसकी निशानियां होगी, तो आज भी बाबा कहते हैं विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जा रहा है इस शौक सर्विस का। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा भी देखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं, ब्रह्मा बाबा भी वतन से तो देख ही रहे हैं ना, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं ना कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं ना, वो समझते हैं मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। कोई समय फिर भूल करते हैं, बच्चे भी ऐसे हैं, कोई समय तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई समय भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। याद में नहीं रहते हैं वो पुरुषार्थ नहीं करते, याद का तो जरूर अपने को कम ही समझेंगे, तो अपने को कम समझते हैं। ये भी तो स्कूल है ना, बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी तो बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। वो दादे ऐसे कहते हैं कभी तो हमारी इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी में रहते हैं, कभी देखो तो खुशी नहीं है, ऐसे क्यों होता है, प्रश्न करते। तो बाबा जवाब देते हैं, तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव बाबा की याद रहे तो फिर से खुशी आ जाएगी, परंतु बाबा की याद वे तब रहे जब इतने अंदर के संकल्पों की पवित्रता हो। अगर संकल्पों में पवित्रता नहीं है तो बाबा की याद भी नहीं रहेगी, तो फिर खुशी भी नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे भाई, तो बाबा कहते हैं अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो, सामने परमात्मा को देखो, बाबा को उसी समय मन की आंख से देखो, तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। शिव बाबा अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, कहां परम धाम में भी तो शिव बाबा का काल तख्त है, फिर ब्रह्मा तन में भी अकाल तख्त है, तो वहां देखो। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, सब अपने अपने अकाल तख्त पर बैठे ये आत्माएं, तो ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भले वो बहन के शरीर में है लेकिन फिर भी क्या समझो, हम आत्मा भाई को ये ज्ञान दे रहे हैं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो क्या होगा, तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी, आत्मा आत्मा को देखेगी तो कोई क्रिमिनल दृष्टि थोड़ी होगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी, जब बेअभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आए हैं। अच्छा क्रिमिनल आए हैं तो अभी सिविल बनाओ ना, खाली मेरी क्रिमिनल आए कह देने से बाबा करेगा क्या, करना तो तुमको है, तो अपनी सिविल आए बनाओ ना। बाप ने आत्मा को दिया है ना तीसरा नेत्र, तो उस तीसरे नेत्र से देखो, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही कहते हैं, जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं वो ब्रह्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो ब्रह्मा बाबा भी तो यही करते थे, देह में आत्मा को देखते हैं। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज, आत्मा आत्मा को देखे, ये रूहानी नॉलेज है। देखो पद कितना ऊंचा पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना चाहिए ना। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मौफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा भी करवाते हो, जो ऊपर गद्दी पर बैठ करके निष्ठा करवाते हैं बाबा उनको भी कहते हैं, तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा यानी योग करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रकुटि में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो ऊपर बैठते वो सकाश दे सकेंगे सबको, परंतु आत्मा खुद भी रहे और आत्मा को देखे तो उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। अरे बाबा अरे कहते, अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना, ऐसे ही तो नहीं अब सहज मिल जाएगा, तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है, ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है, केवल एक बार इस संगम पर सारे कल्प में एक ही बार, एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग पर ही। सो भी तुम ब्राह्मणों को, सारी दुनिया तो नहीं सुनेगी ना, ये पक्का याद कर लो, केवल हम ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हो, और कोई समय में ये नहीं मेहनत करेंगे, न बाबा कहेंगे भी, हाँ बाबा भी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा दूसरे को भी आत्मा समझकर उनको ज्ञान दो, बाबा नहीं कहने आएगा, परंतु संगम पर ही ये बाबा कहते हैं। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है, देना तो आत्माओं को है ना, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है, हाँ आत्मा ही बनी है, परंतु हमको हर आत्मा को भाई भाई रूप में देखना है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हो। रूहानी अभिमानी यानी आत्म अभिमानी, इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं, जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं है ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देना, जैसे हमारे बोल में जौहर है, वो शक्ति है। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हैं ना। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो, बाबा कहते हैं जज करो, ये ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके, तो बच्चे तो सहज समझ सकेंगे ना, तो इसलिए नई बात नहीं लगती है। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, ये ज्ञान है। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं बाबा, हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना होता है, मुझे आना पड़ता है, मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाई मानूं, बाबा भी बंधा हुआ है कि हर 5000 साल के बाद उनको आना ही है। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी, ये इस समय के लिए। हाँ, बाबा का इसमें क्या राज है? बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी, ये इस समय के लिए है, क्योंकि अभी अंत का समय है। इस अंत के समय में केवल बाबा की याद रहे तो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं, पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा, इसमें भी यही है। हाँ, लौकिक बच्चे भी समझते हैं ना, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, इस पढ़ाई से मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो बाबा कहते हैं इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है, बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है कुछ भी नया नहीं है। ये तो सीढ़ी उतरनी और चढ़नी है। इस पर कौन सी कहानी बाबा बताते हैं? जिन्न की कहानी, तो चढ़ो और उतरो। तो इसको क्या कहेंगे? चढ़ो और उतरो, तो उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दे दिया। अब ये नाटक का भी नाम यही है, इस बेहद के नाटक का नाम क्या है? चढ़ना और उतरना, दुख सुख का खेल के कंट्रास्ट बाबा बताते हैं ना, लेकिन ये और एक शब्द जोड़ देते हैं, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना ये खेल है। तो ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, तो ये नाटक ही है चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं। जब कहते हैं ना चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना उतरना, तो कहते क्या जरूरत है, अगर चढ़ जाए तो चढ़ ही जाए ना, उतरे क्यों। तो बाबा कहते नहीं, रामानुसार उतरना भी पड़ता है, ये खेल है। हर एक सोचे मैं सदा ही जीतता रहूं, हार कभी ना खाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो खेल ही है जीत और हार का। तो बाबा कहते हैं, और इसी को तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं ना, खेल का मजा यही है ना, हमेशा जीतना हमेशा हारना, वो भी नहीं कभी जीत कभी हार। तो इसलिए ये भी हार और जीत का खेल है, चढ़ना उतरने का खेल है, खेल खेलो। तो बाबा कहते हैं इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं, तो याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अभी सबको वापस जाना है, तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो, भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। क्यों बाबा कहते हैं भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं और नहीं बनते हैं क्या? हाँ वो भी बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो तो आते ही रजो प्रधान में ना, और धर्म वाले तो वो तो आते ही रजो के समय है, तो भले वो सतो से रजो में जाएंगे, लेकिन वो सतो स्टेज कोई सत्यु की सतो प्रधान स्टेज की तरह तो फिर भी नहीं होगी ना। इसीलिए बाबा कहते ये केवल भारतवासियों के लिए, दूसरी कोई नेशनैलिटी यानी और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो बाप ने आकर के बताया है कि नाटक में हरेक का पार्ट अपना अपना होता है, आत्मा कितनी छोटी है। साइंस दानों को ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, पार्ट भी कितना बजाती है, और वो पार्ट कभी घिसता भी नहीं है। चीजें तो साइंस ने भी बहुत निकाली है सूक्ष्म सूक्ष्म, लेकिन वो तो घिस जाती है ना, लेकिन आत्मा ऐसा पार्ट बजाती है, और कितनी बार बजाया है अनगिनत बार, लेकिन कभी भी पार्ट घिसता नहीं है। तो ये है सबसे वंडरफुल बात, ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वो भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है, ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, प्रश्न करते ना कब बना, हम कहते नहीं बना ही नहीं है ना, ये तो है ही बना बनाया, तो ऐसे कैसे होगा हर चीज बनती है। नहीं, आत्मा थोड़ी बनती है, परमात्मा थोड़ी बनते हैं। अगर उसके लिए भी कहेंगे परमात्मा भी बना तो किसने बनाया, तो परमात्मा को भी किसने बनाया, आत्मा को किसने बनाया, फिर ये प्रकृति को किसने बनाया, किसने भी नहीं बनाया, ये सब बना बनाया। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं ये कुदरत है, बस इसी को कुदरत कहते हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं, ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ये ज्ञान बतलाए, कोई भी ताकत नहीं ऐसे ज्ञान बतलाए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए। हाँ, आप समान बनाने लिए, बाप से वर्षा लेने लिए आत्मा भाई को हम सुना रहे हैं, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी। यहाँ सुख और सुख ही सुख होगा, जय जयकार हो जाएगी या सुख ही सुख होगा, बाकी सब आत्माएं वो सब शांति धाम में होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं पावन बनना है, जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना क्या होता है, कशिश होती है, कशिश होगी। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो, गद्दी मिल जाती है सत्युग की। तो प्रैक्टिस ये करो, ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला। बाबा कहते ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, बस मुरली सुन ली, मुरली पढ़ ली, हो गया काम। नहीं, परंतु बाहर गए और सब भूल गए, तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। बाबा कहते ऐसे नहीं, नहीं, इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वो भी आत्मा आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन यानी बच्चे पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त का मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनते वो माला में आ नहीं सकेंगे। पवित्र बने ही नहीं, वो तो पवित्र आत्माओं की माला है, तो पवित्र नहीं बने तो पवित्र वो माला में कैसे आएंगे। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना, क्यों वो माला सिमरी जाती है, उसका अर्थ होगा ना, कौन है वो दानी। तो बाबा कहते उसका अर्थ होगा ना, माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं, क्योंकि बाप की बहुत मदद की है। जो माला के मड़के हैं वो आत्माओं ने बाप को बहुत मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। जैसे भगवान को याद करते हैं तो उनको भी याद करते हैं, क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत मदद की है उन्होंने भगवान को। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। तुम सिमरे भी जाते हो कैसे, माला के रूप में, फिर तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर की पूजा होती है। आत्मा की भी पूजा होती है, शरीर की पूजा होती है, और सिमरे भी जाते हो। देखो कितने ऊंचे हो गए भगवान के बच्चे। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं और शालिग्राम की भी पूजा करते हैं, और फिर हमारी सिमरनी भी है, हम सिमरे भी जाते हैं। इसीलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे अव्वल नंबर वन। किसमें नंबर वन, पूजा में भी तुम तीखे, क्योंकि भक्ति भी तो हमने शुरू की, फिर हमारा ही वो पूज्य स्वरूप है। तो पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंच बनाता हूँ, कितना ऊंच बनाता हूँ। तो बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया है, कैसे बच्चों को ऊंच बनाते हैं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, बहुत लव होता है, पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, बहुत लव होता है, तो क्या करता है वो बच्चे को कुल्हे पर माथे पर रखता है, बच्चे को माथे पर रखता है, बहुत छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है तो कंधे पर रखता है। तो बहुत लव होता है तो बच्चों को कुल्हे पर माथे पर भी रखते हैं, और बाबा तो एकदम सिर पर रख देते हैं। सिर पर बाबा हमको रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, तो क्या है आज का धारणा का सार? पहला, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? स्पिरिचुअल, रूहानी। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, पवित्र बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहने के लिए मन मना भव जरूरी है। मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आँखों को सिविल बनाना है। वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा, हमारी स्टेज कौन सी है? मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। संपूर्ण योगी किसको कहेंगे? जो मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करे वो संपूर्ण योगी भव। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन लगेगी, एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी क्या समझते हैं? हम कहते हैं ना महाविनाश होगा तो लोग तो डरते हैं, घबराते हैं। हाँ, कहते हैं ऐसे ऐसे क्यों बोलते हो? पर हम क्या समझते हैं, क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे महाविनाश की आपदा को भी तुम क्या समझते हो? ये स्वर्ग के गेट खोलने का साधन है। विनाश जो होगा वो स्वर्ग का गेट खोलने का साधन है। ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय कौन सा शब्द निकले मुख से? वाह वाह। हाँ, बाबा ने कहा हाय हाय के बजाय ओहो ओहो या वाह 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 ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे वाह इतना ऐसा दुखद बात और आप वाह वाह कहते। वाह वाह नहीं, ओहो ओहो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे। ये दुख आया है सुख को लाने के लिए, इसीलिए दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। स्लोगन, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ के अंतर्गत कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म भी कर रहे हैं पर तन का हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले, कर्म की रिजल्ट मन को खींच न ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही कल्याण भी बढ़ता जाए, सॉरी जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कार्य बढ़े और भारीपन आए? नहीं, कार्य भी बढ़ता जाए पर हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। ये अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, क्लास की टोली आज गरम गरम भुट्टा है, भुट्टा और केला बाबा की झोपड़ी के पास मिल रहा है। गरम गरम भुट्टा और केला बाबा की झोपड़ी के पास मिल रहा है, वहीं से लेंगे टोली आज की। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। एनी डब